मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 28 जून 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं ज्योति झज्जर हरियाणा से और रिंकी श्रीवास्तव जगजीत नगर दिल्ली से। मित्रों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे कुछ खबरें आप सबको देनी होती हैं और वो खबरें ये होती हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है। इसे हम लोग छुट्टी के दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं लेकिन कल यानी कि शनिवार को प्रेस क्लिपिंग्स आपको एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी और साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र के दो आर्टिकल यानी कि टोटल चार आर्टिकल मिलेंगे। इनमें से दो हिंदी के होंगे, दो इंग्लिश के होंगे। यहां मैं एक बात थोड़ा सा यहां विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मेरे पास कुछ मेल आए हैं उसमें स्टूडेंट ने जानना चाहा है कि सर आप हर बार योजना के एक ही टॉपिक पर आर्टिकल भेजते रहते हैं, कुरुक्षेत्र के भी एक ही टॉपिक पर आर्टिकल भेजते रहते हैं। तो यहां मैं आप लोगों को बता दूं कि योजना और कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका है, महीने में एक एक आती है और हर पत्रिका एक विशेषांक होता है, मतलब उस पत्रिका में एक ही सब्जेक्ट पर अलग अलग आर्टिकल दिए गए होते हैं। इसीलिए आपको लगातार जो चार आर्टिकल मिलेंगे योजना के तो टॉपिक एक ही होगा लेकिन उस वो तो टॉपिक अलग अलग पॉइंट्स पर होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा, टॉपिक एक ही होगा। जैसे अभी योगा की बात चल रही है तो आपको योगा पर पढ़ने को मिल रहा है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे मालूम पड़ते हैं जब आप योजना और कुरुक्षेत्र उठा करके देखेंगे तो उसमें 10 से 15 आर्टिकल्स महीने के होते हैं, उसमें से छांट छांट करके जो मुझे उपयुक्त लगता है तो चार चार आर्टिकल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों इसी के साथ ही एक वीकली क्वेश्चन आपको दिया जाता है, साप्ताहिक प्रश्न मेन्स के पैटर्न पर, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें हम लोग स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजते हैं। आज के मुख्य विषय के बारे में हम लोग आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर बात करेंगे लेकिन थोड़े से अलग अंदाज से। आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जापान के ओसाका पहुंच गए हैं जहां G20 की बैठक होनी है। G20 के बारे में मैंने पहले भी थोड़ी सी चर्चा आप सबसे की थी लेकिन एक बार मुझे लगता है कि फिर से रिपीट कर देना चाहिए ताकि आपको ये पता लग सके कि ये जो G20 है ये किस मायने में इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के जो टॉपिक होते हैं इन्हें आपको दोनों एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना होता है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्री के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, G20 की बैठक कहां हुई, तो जापान के ओसाका में हुई, राइट। इसमें 19 देश और जो 20वां जो सदस्य है वो है यूरोपियन यूनियन, यानी कि इंडिविजुअल कंट्री है 19 और यूरोपियन यूनियन तो एक समूह है वो 20वां देश है, इसीलिए है G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। लेकिन स्ट्रेट क्वेश्चंस तो आप जानते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में आईएएस में नहीं पूछे जाते, तो यहां एक थोड़ा सा ट्विस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी इस तरह के गहराइयों में यूपीएससी चली जाती है, कि बेसिकली G20 से पहले यह समूह G7 था, मतलब ग्रुप ऑफ 7, सात देश इस G7 के मेंबर थे, फ्रांस जर्मनी इटली जापान ब्रिटेन अमेरिका और कनाडा। आप देख रहे हैं कि ये सब बड़े बड़े देश हैं, है ना, ये सदस्य थे। लेकिन बाद में फिर 1999 में इन सातों देशों की एक बैठक हुई थी कोलोन में और वहां फिर इसे G20 में कन्वर्ट किया गया और यह कहा गया कि देश की जो बड़ी विश्व अर्थव्यवस्थाएं हैं 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए एक फोरम बनाया जाए और G20 अस्तित्व में आया। तो यहां प्री के लिए हो गया आपका G7 कोलोन सबमिट में G20 बना। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा महत्व है वो इस बात को लेकर के है, देखिए कि दुनिया में 200 देश हैं लेकिन इसमें केवल 20 देश हैं, 10% ही हैं, लेकिन ये इनका जो कब्जा है दुनिया पर वो आप कह लीजिए कि 3/4 से भी ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर 3/4 आबादी इन 20 देशों में रहती है, इनके पास जीडीपी का, दुनिया के जीडीपी का 85% है, 75% जो विश्व व्यापार है वो इनके हाथ में है, विश्व में जो निवेश होता है 80% यही सब करते हैं। तो आप कह लीजिए कि G20 तो एक प्रकार से एक ऐसा समूह हो गया जो पूरी की पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखे हुए है। तो देखिए, जब आपको ये पता लगता है कि नहीं, ये देश, ये ग्रुप इतना महत्वपूर्ण है, तो सीधी सी बात है कि उस ग्रुप के बारे में अगर कोई भी घटना घटती है या कोई भी आर्टिकल एडिटोरियल आपको पढ़ने को मिलता है, तो सीधी सी बात है कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों, न्यूज में आपने ये भी सुना भारत और जापान संबंध के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने अपने संबंधों की शुरुआत गाड़ी बनाने से की थी, उनका संकेत मारुति की ओर था, मारुति भारत और जापान का संयुक्त उद्यम है, और इसके बाद हम आज बुलेट ट्रेन तक पहुंच गए हैं। और भारत के लिए जापान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो चीन अपने पूरे के पूरे उस क्षेत्र में हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपना विस्तार करते चला जा रहा है, उसके संतुलन के रणनीतिक दृष्टि से भी जापान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहां मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा भारत और अमेरिका को लेकर। आपको मालूम है कि अभी अमेरिका के विदेश मंत्री हमारे यहां आए थे, हमारे विदेश मंत्री से मिले, और अभी जो जापान में बैठक हो रही है ओसाका में, उसमें भी हमारे राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलेंगे। इसके थोड़ा सा बेसिक को समझ लीजिए कि अभी प्रॉब्लम क्या आ गई है भारत और अमेरिका के संबंधों में। मूल प्रॉब्लम यह है मित्रों कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए ट्रंप ने नारा दिया था, वो राष्ट्रपति बन गए, अब उन्हें अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, तो अब उनको यह जरूरी लग रहा है कि विदेशों का जो सामान उनके देश में आकर बिक रहा है उसे रोका जाए। और चाइना तो आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना आगे है, चाइना दुनिया में सबसे सस्ता सामान बनाने वाला देश हो गया है, तो उन्होंने चाइना के सामान पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और यहां से ट्रेड वार की शुरुआत हो गई। जब ट्रेड वार की शुरुआत हो गई, कुछ समय के बाद भारत भी उसकी गिरफ्त में आया, और जो ट्रंप प्रशासन है उसने बकायदे भारत से जो स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका जाता था उस पर टैक्स लगा दिया। देखिए, जैसे ही आप टैक्स लगा देंगे वो वस्तु उस देश में महंगी हो जाएगी, तो फिर उसे लोग खरीदेंगे नहीं, और भारत हर साल लगभग 10,500 करोड़ रुपए का एल्यूमिनियम और स्टील अमेरिका को भेजता था। इसको लेकर के भारत ने बकायदे विश्व व्यापार संगठन का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन चलिए वो तो जब मामला होगा होगा। बाद में भारत को भी परेशान होकर के फिर अमेरिका से जो सामान हमारे यहां आ रहा है उस पर टैक्स लगा दिए, लगभग 29 अमेरिकी सामान पर, जिसमें दाल है, बादाम है, अखरोट है, और एक मोटरसाइकिल है हार्ले डेविडसन, उस पर टैक्स लगा दिया। अब अमेरिका अब इस बात को लेकर के चिढ़ गया कि हमारे सामान पर भारत ने टैक्स लगा दिया, तो अब ये एक तरह से खिंचाव की स्थिति पैदा हो गई है, संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिका कह रहा है कि आप टैक्स मत लगाइए, भाई भारत भी कहेगा कि आप भी टैक्स मत लगाइए। तो आप देखिए, यही है संरक्षणवाद कि आप अपने यहां के उद्योगों को संरक्षण दे रहे हैं। तो ये एक संकट पैदा हो गया भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर। इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी भारत और अमेरिका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जब बातचीत होगी तो आप देखेंगे कि इस मुद्दे पर शायद कुछ हल निकले, या आपको कम से कम पढ़ने को तो मिलेगा ही। दोस्तों, आपने हमारे प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट न्यूज में ही सुना है कि किस तरीके से 5 वर्ष में भारत की कोशिश है कि 50,000 नए स्टार्टअप तैयार किए जाएं और उसके लिए वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। आज के करंट कंटेंट में मित्रों, आपको सरहद का सुरक्षा प्रहरी ए सेट पर छोटा सा आर्टिकल प्रोवाइड किया गया जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है। बहुत ही छोटा सा नोट है आप कह लीजिए, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, उसे ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके बहुत काम का होगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, एक राष्ट्र एक चुनाव। पहली बात, क्या यह हमारे इस साल के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है? जब आप इस पर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सन 2017 का अनसॉल्व पेपर उठा करके देखें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, तो उसमें बकायदे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 के मेंस में कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, चर्चा कीजिए। चूंकि 2017 में ये क्वेश्चन आ गया है तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो 2019 का मेंस होना है तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए। मतलब दावा तो नहीं किया जा सकता कि आएगा ही नहीं, क्योंकि इस पर इतनी चर्चा हो रही है और अभी एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो दैनिक हिंदुस्तान में छपा है और इसे लिखा है ओपी रावत जी ने, जो इससे पहले हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है और बड़े अलग तरीके से लिखा गया आर्टिकल है। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप एक साथ चुनाव कराएंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और बाकायदे क्वांटिफाई करके बताया है, मतलब आंकड़ों के जरिए बताया है, स्टेटमेंट के जरिए नहीं कि अर्धसैनिक बल ज्यादा लगेंगे और ईवीएम मशीन ज्यादा लगेगी और फलाना फलाना, बहुत अच्छे तरीके से आंकड़े दे दे करके उन्होंने बताया है। उसमें से आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। यहां जो मैं मेन बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, देखिए सिविल सर्विस की जो तैयारी की जाती है और खासकर ऐसे स्टूडेंट जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इस आर्टिकल में बकायदे पूर्व में हमारे रावत जी ने यह कहा है कि सरकार को इसके लिए अगर एक साथ चुनाव कराने होंगे तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करना पड़ेगा, तभी वो ये काम कर सकती है। अब आपने पढ़ लिया कि ठीक है 83, 172 और 356 संशोधन करना पड़ेगा, आपने रट भी लिया और एग्जाम में आप लिख भी आएंगे, लेकिन जो सही तैयारी होती है मित्रों वो ये होती है कि फिर अब आप अपनी किताब उल्टे, संविधान की किताब अगर आपके पास है तो देखें, पॉलिटिकल साइंस की किताब है तो आपके देखें कि उसमें 83 क्या है। आपको मालूम होना चाहिए ना कि भी 83 में संशोधन होना है तो क्या संशोधन होना है। हो सकता है कि प्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाए कि निम्न में से किस अनुच्छेद में संशोधन करना अनिवार्य होगा यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो, और अनुच्छेद के उसमें नाम दे दें, तो आप उसमें से कैसे ढूंढ पाएंगे। यही बेसिकली एक अतिरिक्त आप यूं कह लीजिए श्रम की मांग करता है और केवल 5 मिनट का काम है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत इसमें टाइम लगना है। हाँ, आलस्य के कारण हम इस 5 मिनट को भी टालते रहते हैं, देख लेंगे और फिर कभी नहीं देख पाते। अदरवाइज देखिए बहुत सिंपल सा है कि अनुच्छेद 83 का संबंध इस बात से है कि संसद के सदनों की अवधि, राज्यसभा और लोकसभा, ये कितने साल के लिए होंगे। फिर 172 का संबंध इसी के पैरेलल राज्यों की विधानसभाओं के लिए, विधानमंडलों के लिए, कि ये कितने साल के लिए होंगे। और 356 का संबंध है, आप जानते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है कि अगर राज्यों में संवैधानिक विफलता हो जाती, संविधान का तंत्र काम नहीं कर रहा है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये तीनों का संबंध आप देखिए क्या है, संविधान मतलब जो हमारी विधानसभाएं हैं, जो हमारे संसद हैं, इनके कार्यकाल से है। और अगर एक साथ चुनाव होने हैं संसद के और पूरे राज्यों की विधानसभाओं के, तो सीधी सी बात है कि उनकी अवधि भी एक होनी चाहिए, वो मैच करनी चाहिए। जबकि जो हमारा संविधान अभी कह रहा है उसके हिसाब से वो मैच करना अनिवार्यता नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आपको इन अनुच्छेदों में परिवर्तन करने पड़ेंगे, इनमें संशोधन करने के बाद ही ऐसा किया जाना संभव होगा। अब ये बात अलग है कि अगर सभी राजनीतिक दल इसके लिए सहमत हो जाते हैं तो आप बड़े आराम से इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में तो आपको एक बहुत ही अपने आप को साउंड रखना पड़ेगा, चीजों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं गोलू शुक्ल, इंद्रमोहन आनंद, ब्रजेश कुमार, शिवानी सिंह, अलका चंदर, अनूप कुमार वर्मा लखनऊ से, अशोक पलसानिया बेंगलुरु से, गौरव मेघवाल, राहुल कुमार, चंदन सिंह कुंवर, प्रिया सक्सेना, अरविंद कुमार लोधी, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, रवि कुमार दयालपुर से, हरमेश रेवारिया, बलवीर सिंह, सुनीता यादव और अखिल, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पूर्व आप सबके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और अब आप सब मेरे अभिवादन को स्वीकार करते हुए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।